मार्केट कमज़ोर को दबाती है और फैमिली कमज़ोर को सपोर्ट करती है। हम अपने पेरेंट्स को राज़ी किए बग़ैर अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेंगे। सबसे अहम काम जो आप किसी कागज़ के ऊपर कर सकते हैं उसका नाम है सेल्फ एनालिसिस। वेस्ट हमें पेरेंटिंग नहीं सिखा सकता, ये जॉर्ज और पीटर और माइकल आपको ये नहीं बता सकते कि अच्छी पेरेंटिंग क्या है। घर में सबसे ज़्यादा मज़े का काम जो होना चाहिए वो सोना नहीं है, वो खाना नहीं है, वो बातें हैं। आज का जो सेशन है उसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, मेरी गुफ्तगू के तीन कंपोनेंट्स हैं मेनली। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, इस मौजू पे काम करने की ज़रूरत क्यों है। दूसरा कंपोनेंट होगा कि इस वक्त के करंट चैलेंजेस क्या हैं, और तीसरा कंपोनेंट मेरी गुफ्तगू का है कि क्या किया जा सकता है। और थोड़ा सा मैं मौजू को और वाजे कर दूँ, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, इससे हमारी मुराद ये है कि किसी भी फैमिली के अंदर या किसी भी ख़ानदान के अंदर एक ऐसा एतमाद और ऐसे गहरे ताल्लुक़ की फ़िज़ा जिससे जो फैमिली लाइफ है वो सही मानों में बामानी हो सके, मीनिंगफुल हो सके। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी गुफ्तगू हम इंशाल्लाह करेंगे। आज हम बात करेंगे कि ख़ानदानी ज़िंदगी या फैमिली लाइफ को कैसे खुशगवार बनाया जा सकता है, या एक ऐसी ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद कैसे रखी जा सकती है जो गहरे ताल्लुक पर कायम हो और जिसके अंदर ताल्लुक बहुत मीनिंगफुल हो, बहुत बामानी हो। तो इंशाल्लाह इस पर हम बात करेंगे। जब हम ये बात करते हैं अंग्रेज़ी में, जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फैमिली, इसके लिए उर्दू में जो है, जब हम इसको उर्दू में लेकर आते हैं तो एक लफ्ज़ आता है ख़ानदान और एक लफ्ज़ आता है कुंबा। कुंबा लफ्ज़ सुना है आपने, कुंबा? तो इंग्लिश में ख़ानदान के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है एक्सटेंडेड फैमिली, यानी आप जिसमें सबको ले लेते हैं। और कुंबे से मतलब यह है कि आप हैं और आपकी आपके स्पाउस हैं और आपके बच्चे हैं, यह आपका छोटा सा कुंबा है 4-5 लोगों पर। लेकिन फिर आपके बहन भाई हैं, आपके वालदैन हैं, इन सबको शामिल कर लें तो फिर ये ख़ानदान है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कभी एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं, कभी कोई और लफ्ज़ भी देने की कोशिश करते हैं। जो ख़ानदान की वैल्यूज़ होती हैं और जो मार्केट की वैल्यूज़ होती हैं, इनमें बहुत फासला होता है। और मार्केट की वैल्यूज़ हर इंसान में बड़ी कामयाबी से उतर जाती हैं, लेकिन फैमिली वैल्यूज़ जो हैं उनको बड़ी कामयाबी से हर इंसान के अंदर इनकलकेट करने के लिए बड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। और मार्केट वैल्यूज़ और फैमिली वैल्यूज़ में बहुत फ़र्क है। मार्केट वैल्यूज़ में मार्केट कमज़ोर को दबाती है और फैमिली कमज़ोर को सपोर्ट करती है। इस मौजू पे बात करने की ज़रूरत क्यों है, उसकी तीन बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह उसकी ये है कि जब तक हम फैमिली लाइफ को खुशगवार नहीं बनाएंगे और मीनिंगफुल नहीं बनाएंगे, हर फर्द की ज़हनी और नफ्सियाती सेहत इंश्योर नहीं की जा सकती। हमारी साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ का ताल्लुक हमारी हैप्पी और मीनिंगफुल फैमिली लाइफ से है। अगर हमारी फैमिली लाइफ ट्रू सेंस में मीनिंगफुल और हैप्पी नहीं हो पाती, तो हम साइकोलॉजिकली और मेंटली एक बहुत हेल्दी इंडिविजुअल के तौर पे हमारा रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इस पे काम करने की ज़रूरत क्यों है, यानी अपने घर को ताल्लुक और खुशगवार ताल्लुक और एक मीनिंगफुल बामानी ज़िंदगी ख़ानदान की, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत क्यों है, उसकी दूसरी बड़ी वजह यह है ताकि हमारा घर जो है वो तरबियत गाह बन सके, हमारे बच्चों की अच्छी तरबिया हो सके, खुद हमारा अच्छा तज़किया हो सके, हमारी अपनी पर्सनल प्योरिफिकेशन मुमकिन हो सके, हमारे बच्चों की अच्छी तरबिया मुमकिन हो सके। अच्छा, तरबिया से क्या मुराद है ये मैं अभी आगे और बात करूँगा, लेकिन मुख्तसरन मैं तरबिया के बारे में ये बताऊँ। आपके जो बच्चे हैं ये अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल कर सकें, इनको अल्लाह ने एक एबिलिटी टू चूज़ दी है, ये इनके अंदर अपनी पसंद से, ये अपनी पसंद से अच्छा काम कर सकें, इन्हें अच्छे काम के लिए फ़ोर्स ना किया जाए, इन्हें बुरे काम के लिए से ज़बरदस्ती रोका ना जाए, बल्कि ये ख़ुद अपनी विल और अपनी चॉइस का इनकी चॉइसेस अच्छी हो जाएं और अपनी चॉइसेस का सही इस्तेमाल कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड तरबिया। तरबिया ये नहीं है कि आप अपने बच्चों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दें और आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती अच्छे काम कराएं, दैट इज़ नॉट तरबिया। तो इस मौजू पर काम करने की जो दूसरी वजह थी वो ये थी ताकि हम तरबिया कर सकें। और तीसरी वजह यह है कि जब तक हम घरों को अपने खुशगवार नहीं बनाएंगे, फैमिली लाइफ को हम अच्छा नहीं बनाएंगे और बामानी नहीं बनाएंगे, जब तक हमारी सोसाइटी जो है वो वाकई उसके अंदर एक खैर और एक दूसरे के साथ अच्छाई का जो जज्बा है वो उसके अंदर नर्चर नहीं कर सकता। तो रियल सोशल एक्सेलेंस जो है वो उस वक्त मुमकिन होती है जब हम फैमिली यूनिट को बेहतर करते हैं। तो किसी भी सोसाइटी में लॉज बनाने से ये ज़रूर होता है कि चीज़ें एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है, सिस्टम्स बन जाते हैं और ऊपर से एक स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद होता है कि भाई ठीक है, सब कुछ एक सिस्टम में हो रहा है, चीज़ें बिल्कुल ठीक से हो रही हैं, देयर इज़ अ डिसिप्लिन इन एवरीथिंग। लेकिन जो ट्रू स्पिरिट है खैर की और ट्रू स्पिरिट है सोशल एक्सीलेंस की, वो उस वक्त मुमकिन होती है जब फैमिली लाइफ ठीक होती है। तो फैमिली लाइफ जब ठीक होगी तो हमारे बच्चों की भी तरबिया होगी, फैमिली लाइफ जब ठीक होगी तो हमारी अपनी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक होगी, और फैमिली लाइफ जब ठीक होगी तो इंशाल्लाह सोशल एक्सीलेंस पॉसिबल होगी। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है, ये वो रैशनल्स हैं जिसकी बेसिस पे हम इस बात को कर रहे हैं। अब जो मेरी बाकी गुफ्तगू है उसमें मैं दो बातें जो मुझे करनी है, एक तो ये कि करंट चैलेंजेस क्या हैं, मॉडर्न डे चैलेंजेस क्या हैं जो इस काम के रास्ते में खड़े हैं, और चैलेंजेस क्या हैं, और फिर इन चैलेंजेस से निकलने के लिए अब करने का काम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बीइंग मतलब एक मदर क्या कर सकती है, एक फादर क्या कर सकता है, दोनों मिल के क्या कर सकते हैं। तो इस पे मैं कुछ इंशाल्लाह सजेशंस दूंगा। जहाँ तक चैलेंज की बात है, आप लोग माशाल्लाह वाकिफ़ होंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हमारी जो लाइफ मॉडर्न होती जा रही है, सोसाइटी एडवांस्ड होती जा रही है, वैसे वैसे तरबिया का और फैमिली लाइफ की क्वालिटी का चैलेंज बढ़ रहा है। मेरा ख्याल है इसको सब लोग रियलाइज़ करते हैं, ये रियलाइज़ करते हैं या नहीं, जो क्वालिटी ऑफ फैमिली लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ फैमिली टाइम है, वो 30 साल पहले कैसा था और अब कैसा है। तो आपको अंदाज़ा होगा कि 30 साल पहले वी हैड मोर फैमिली टाइम एंड द क्वालिटी ऑफ फैमिली टाइम वॉज मच बेटर। मैं मतलब एक ओवरऑल पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी सोसाइटी में है, हमें टाइम बहुत कम मिल रहा है, और जो टाइम है वो टाइम की क्वालिटी जो है वो डे बाय डे जो है वो क्वालिटी जो है वो कम होती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें ये काम कैसे किया जाए, और जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि हमारे पास टाइम कम हो गया, हर एक के पास टाइम कम हो गया। सिर्फ फादर के पास टाइम कम नहीं हुआ है बल्कि बच्चों के पास भी टाइम कम हुआ है, वो बहुत ऑक्यूपाइड हैं। अगर आपके पास टाइम निकलता भी है तो बच्चों के पास टाइम नहीं निकलता। अगर फादर के पास टाइम निकलता है तो पता लगता है कि वाइफ के पास बहुत सारा काम है और टाइम नहीं है, कलेक्टिव फैमिली टाइम डे बाय डे कम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमें देखने की और जिसको हमें एड्रेस करने की और जिसको हमें कह लीजिए इसके ऊपर एक सेंसिबल और प्रोएक्टिव और बहुत थॉटफुल किस्म का इसका सोल्यूशन, इसको बहुत सोच के केयरफुली इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है या इसको हैंडल करने की ज़रूरत है। कि और एक चैलेंज ये भी है कि ना सिर्फ ये कि वक्त कम मिलता है बल्कि जो वक्त मिलता है उसको हम ठीक से प्रोडक्टिव नहीं बना पाते। जो वक्त मिल रहा है फैमिली के लिए वो वक्त अंडर यूटिलाइज्ड रहता है कभी कभी। दूसरा जो बड़ा चैलेंज है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारी मॉडर्न एजुकेशन जो सिस्टम है उससे भी पैदा हो रहा है, और ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। और वो ये है कि जैसे जैसे हमारे बच्चे तालीम लेते जा रहे हैं वैसे वैसे वो अपने पेरेंट्स को बिल्कुल उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स के पास उतनी समझ नहीं है, और दे कंसिडर देमसेल्व्स मच स्मार्टर देन देयर पेरेंट्स। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि चीज़ें और काम इंसान से ज़्यादा अहम हो गया है। बच्चा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना होमवर्क इम्पॉर्टेंट है, बच्चा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना उसका एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट है, या फैमिली टाइम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना घर के काम इम्पॉर्टेंट है। हमने कामों को और चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, और अगर ये तरतीब उलट जाए तो हमारी नफसियाती ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती। किसी भी इंसान की नफसियाती ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, हमारी यानी पेरेंट्स की भी जो नफसियाती ज़रूरतें हैं जिसको मैं साइकोलॉजिकल नीड्स कहता हूँ, वो पूरी नहीं हो सकती हैं अगर आप चीज़ों को इंसानों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देंगे या अपने कामों को इंसानों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देंगे। बच्चे की प्राइमरी नीड जो है वो आपका अनकंडीशनल ट्रस्ट है, और वो अनकंडीशनल ट्रस्ट उस वक्त उसे मिलता है जब आप उसके होमवर्क को या उसके एग्ज़ाम को या उसके और कामों को ठीक है वैल्यू देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हम ये बात कर रहे हैं कि इस मौजू को ठीक से समझने की और इस पर काम करने की ज़रूरत है। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल सजेशंस आपसे शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं चाहूंगा कि हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएं। क्या करने की ज़रूरत है, इस सारी सिचुएशन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या हम करें? मेरा पहला जो मेजर सजेशन है वो है कि हम ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स को ठीक कर लें। ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स किसे कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो रिलेशनशिप का वेब है, देखिए आप किसी की बहन हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की वाइफ हैं, किसी की अम्मी हैं, और किसी की फ्रेंड हैं, किसी की नेबर हैं, ये सब किसी की नीस हैं, तो हमारे बहुत सारे रोल्स हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा रिलेशनशिप होना चाहिए और कौन सा रोल हमने सबसे इम्पॉर्टेंट बना लिया है, इसको जब तक हम ठीक नहीं करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अक्सर मैं देखता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, और वो कभी कभी ऐसी बात कहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे बहुत नाराज़ है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखो, नाराज़ होने का हक किसे है और किसे नहीं है, ये मसला जब समझ आएगा, जब ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप ठीक होगा। आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ नहीं हो सकते, हाँ आपके पेरेंट्स आपसे नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उल्टा काम करना शुरू कर दें तो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। इस वक्त की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसने अपने रिलेशनशिप का सेंटर जो है वो बच्चे को बना लिया है, जो कि ठीक नहीं है। बच्चे अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल ट्रस्ट और अनकंडीशनल रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं। ये उनकी नीड है, ये उनकी बहुत बेसिक नीड है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, स्पेशली जो मर्द हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि वो सबसे पहले बेटे हैं। आप सबसे पहले वालिद नहीं हैं, आप सबसे पहले बेटे हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो ये जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स है ये बिल्कुल चेंज हो गया है। बल्कि मैं कभी कभी एक और क्वेश्चन करता हूँ, वो क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूँ, एक्चुअली ये सिर्फ सोचने के लिए क्वेश्चन होगा। अगर आपके बच्चों से ये पूछा जाए कि आपके अब्बू जो हैं वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं या आपकी अम्मा को, तो उनका क्या जवाब होगा और उनका कौन सा जवाब सही होगा? इस वक्त अगर हम ये सवाल सोसाइटी में करें तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि वो हमें ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर यही सवाल बच्चों से पूछें कि आपकी मदर जो हैं वो आपको ज़्यादा प्रेफर कर, आपको ज़्यादा वैल्यू देती हैं, इम्पॉर्टेंस देती हैं, या आपके फादर को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हैं, तो बच्चे कहेंगे हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हैं। जबकि एक्चुअली होना ये नहीं चाहिए, होना ये चाहिए कि बच्चे कहें कि मेरी अम्मी जो हैं वो मेरे फादर को ज़्यादा वैल्यू देती हैं मेरे ऊपर, और मेरे फादर जो हैं मेरी अम्मी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं मेरे ऊपर। तो लेकिन चूंकि ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप उल्टा हुआ है, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे बच्चे हो गए हैं, उसके बाद हमारी बीवी हो गई है, और उसके बाद अगर कोई दोस्त वोस्त है तो वो है, बाकी कोई है नहीं है, ये एक ओवरऑल सिचुएशन है सोसाइटी की। तो एक बात हमें समझनी होगी, हम अपने पेरेंट्स को राज़ी किए बगैर अपने बच्चों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमारे बुढ़ापे में हमारी खिदमत करेंगे। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपसे दूर रहते हैं, वो आपके साथ नहीं रहते, आप उनको रोज़ाना विज़िट नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके साथ एक सेंस ऑफ कनेक्शन मेंटेन कर सकते हैं, उनके साथ एक सेंस ऑफ ऑफ रिलेशनशिप और एक फीलिंग्स ऑफ ट्रस्ट को आप मेंटेन कर सकते हैं, और आप उनके साथ, आप उनको टेलीफोन कर सकते हैं, आप उनकी उनकी खैरियत पूछ सकते हैं, आप उनके लिए अपनी एक 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 फीलिंग्स और अपनी केयर जो है उसका इजहार कर सकते हैं, और प्रैक्टिकली अगर उनकी कोई नीड है तो आप उसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो असल में बच्चा कभी कभी ये सोचता है कि मेरे अब्बा जान जिस तरह की खिदमत मुझसे चाहते हैं ऐसी खिदमत अपने पेरेंट्स की तो करते नहीं हैं। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो सुबह शाम विटनेस करता है, और उसकी वजह से ये सॉल्व नहीं हो पाता। तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिलेशनशिप्स है उसके अंदर हमारे पेरेंट्स टॉप पे होने चाहिए, और उसके बाद हमारी अपनी जो फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, ये उसके बाद आने चाहिए। तो और दूसरी बात ये कि वो बड़ी अच्छी बात किसी गोरे ने कही थी कि द बेस्ट थिंग अ फादर कैन डू फॉर हिज चिल्ड्रन इज टू लव देयर मदर। ये काम होना मुश्किल हो गया। वो फादर ये समझता है द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू फॉर माई चिल्ड्रन इज टू लव माई जॉब। तो कैरियर इज एवरीथिंग, और वो कैरियर जो है वो इतना ज्यादा हावी है कि हमें बहुत मुश्किल से टाइम मिलता है, और फिर हम बहुत थके हुई हालत में, और कभी कभी डिस्टर्ब्ड, हम बहुत स्ट्रेस में फिर बच्चों को हैंडल करते हैं, और वो क्वालिटी लाइफ जो है, जो फैमिली लाइफ है उसकी क्वालिटी अफेक्ट करती है। दूसरा बहुत अहम सजेशन ये है कि हमारे पास जो टाइम है उसको हम केयरफुली रिव्यू करें। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो मर्द हैं, कि वो ऑफिस के काम को ऑफिस में क्लोज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऑफिस को ऑफिस में क्लोज नहीं किया। वो अपने घर में ऑफिस को लेकर आते हैं और ऑफिस कंटिन्यू करता है, और ऑफिस बाज़ोकात वीकेंड्स पे भी कंटिन्यू करता है। तो ज़रा देखने की ज़रूरत है कि ऑफिस को कितना लिमिट हम कर सकते हैं, और जो टाइम हम कितना टाइम बचा सकते हैं फैमिली लाइफ के लिए, इसको हमें इंटेंशनल एफर्ट करने की ज़रूरत है, एक डेलिबरेट एफर्ट करने की ज़रूरत है टू मिनिमाइज कैरियर रिलेटेड एक्टिविटीज़ और जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ और अर्निंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ एंड मैक्सिमाइज फैमिली टाइम। इसके लिए हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह कि जो टाइम हमारे पास फैमिली के लिए मिलता है उस टाइम के अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उस टाइम के अंदर जो मीनिंगलेसनेस है उसको इरेडिकेट करें। तीसरा जो बहुत अहम सजेशन है वो ये है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अपने बच्चों और अपनी बीवी को, या अगर मैं ख्वातीन से पूछूं कि अपने फैमिली को खुश करने के लिए आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपको पैसे खर्च किए बगैर आप अपने चाहने वालों को खुश कैसे कर सकते हैं, हाउ मेनी वेज डू यू नो टू प्लीज योर लव्ड वंस विदाउट स्पेंडिंग मनी। एक बहुत अहम चीज़ है कि हम अपनी लाइफ, जो हमारा चाइल्डहुड है, जो हमारे अपने पेरेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारा अपना ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को सुनाएं, वो हम शेयर करें। जब हम छोटे थे तो क्या होता था, जब हम छोटे थे तो ये करते थे। आप ये जितना सुनाएंगे उसकी एक फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। जिस बच्चे को अपनी फैमिली की हिस्ट्री नहीं पता उस बच्चे की फैमिली कमिटमेंट कमज़ोर रहेगी। आपके बच्चे को आपकी फैमिली की एक रीज़नेबल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है कि करिकुलम के अंदर नेशंस को उनकी हिस्ट्री बताई जा रही है। US के अंदर US हिस्ट्री पढ़ाने पे बड़ा ज़ोर है। दुनिया के हर मुल्क के करिकुलम के अंदर ये देखा जा रहा है कि अगर हमने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ाई तो इनकी जो कमिटमेंट है उस कॉज के साथ वो वीक हो जाएगी। तो वो कोशिश करते हैं कि हिस्ट्री पढ़ाएँ और उसकी बहुत सारी चीज़ें बच्चों से शेयर करें जो उसके मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस हैं। हम भी ये काम करें, हम अपने पास कभी टाइम निकाल के ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि आप अपने चाइल्डहुड की कितनी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों से शेयर करना चाहते हैं, आप अपने पेरेंट्स के बारे में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों से शेयर करना चाहते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों से शेयर करना चाहते हैं। एक नोटबुक के अंदर उन सबको लिस्ट डाउन करें और फिर ये देखें कि उनमें से कितनी शेयर कर ली। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके दादा बहुत अच्छे राइटर थे, लेकिन उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ने कभी भी अपने दादा की कोई तहरीर ना पढ़ी ना सुनी, बल्कि उनको ठीक से पता भी नहीं है कि वो राइटिंग किसके बारे में करते थे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि उनकी नानी या उनकी दादी, उनकी एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छी नज़में गाती थी, उनकी पोएटिक सेंस बहुत अच्छी थी, या कोई भी उनकी एक्टिविटी थी, उनकी कोई स्ट्रेंथ थी। बच्चों को ये नहीं पता। तो आपकी फैमिली की अपनी एक हिस्ट्री है, आप ख़ुद भी उसको मालूम करें। आप जिस इलाके में रहते थे, जहाँ आप बॉर्न हुए, जो आपका जो नेबरहुड था जब आप छोटे थे, ये चीज़ें बच्चों को बताएं। उनका एक सेंस ऑफ कह लीजिए फैमिली हिस्ट्री उनका डेवलप होगा, बच्चों की एक इन सारी चीज़ों को जानने की उनकी ख्वाहिश होगी और आपके साथ उनकी रिलेशनशिप और बेहतर होगी। तो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ शेयर करें। उसके अंदर आपको ये ख़ास ख्याल रखना है कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस इस तरह शेयर करें कि अपनी लाइफ के तकलीफदेह वाकयात को भी ऐसे सुनाएं कि उसमें एक जज्बा शुक्र ज़िंदा हो। कि जब हम छोटे थे तो हम एक छोटी सी जगह पर रहते थे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, हमारी इनकम बहुत कम थी, लेकिन हम इतना इन्जॉय करते थे और उसके अंदर हमें ये होता था और ये होता था और ये होता था और ये होता था। तो बच्चे मतलब रश्क से उस वाक़े को सुने कि जब आपका इतना छोटा सा घर था और आपके पास इनकम इतनी कम थी और रिसोर्सेज इतने कम थे और वेदर इतना इतना सख्त होता था और इतनी गर्मी पड़ती थी और उसके अंदर आप विदाउट एसी और विदाउट सो मैनी रिसोर्सेज यू आर एबल टू लिव अ वेरी वेरी हैप्पी एंड कॉन्टेंट लाइफ। ये स्टोरी उनको सुनने की ज़रूरत है, ये उनको सुनने की बहुत शदीद ज़रूरत है कि आप बताएं कि हम ऐसे जीते थे और हमें उसमें बहुत मज़ा आता था और बहुत अच्छा होता था, वो बहुत बेहतरीन टाइम है। जब आप ये बात शेयर करेंगे तो आपके बच्चे भी इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ इस तरह की और बातें सुनने को और वो फिर इस बात को, उनके अंदर एक ग्रैटिट्यूड का जज्बा पैदा होगा, वो चीज़ों के अंदर उनके अंदर एक समझ आएगी कि अच्छा हम कहाँ कितना लंबा सफ़र करके आज जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ कैसे पहुँचे हैं, ये बात उन्हें समझ आएगी। बहुत से बच्चों को ये पता ही नहीं है कि उनके वालदैन ने कितना लंबा सफ़र किया है, कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके बच्चों को ये बात पता हो। एक और पॉइंट ये है जो बहुत ग्लोबल प्रॉब्लम है, इनफैक्ट वो है इशू ऑफ टेम्परामेंट। अगर मैं ये क्वेश्चन करूँ कि कितने लोगों को ये लगता है कि उनका गुस्सा बहुत है, अच्छा किसी को भी नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, हाँ वो जो लोग किसी के साथ आए हैं वो तो सब हाथ उठा रहे हैं, जो अकेले आए हैं वो सोच रहे हैं कि अच्छा जब कोई नहीं देख रहा तो क्या हुआ। तो ये आप जो लोग आपके साथ रहते हैं उनसे पूछिए ये सवाल कि तुम्हारे ख्याल में तुम मेरे टेम्परामेंट को कैसे रेट करते हो, 1 से 5 के स्केल पे तुम्हारे ख्याल में मेरा टेम्परामेंट कहाँ स्टैंड करता है। ये सवाल योर स्पाउस इज़ द बेस्ट पर्सन टू रेट योर सेल्फ। अब वो अगर वो बहुत अच्छा जवाब दे तो भी इसका मतलब है कि वो डर रहा है, मतलब फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके टेम्परामेंट का, क्योंकि वो मतलब जाहिर सी बात है घबरा रहा है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर मैंने सही बताया। तो टेम्परामेंट पे काम करने की ज़रूरत है। टेम्परामेंट कैसे ठीक हो सकता है? टेम्परामेंट उस वक्त ठीक होता है जब हम अपने बारे में सोचते हैं, जब हम अपने आप से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यस आई कैन चेंज माई सेल्फ। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों का जो टेम्परामेंट इशू है, असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका टेम्परामेंट का प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम ये है कि आपकी सेल्फ एस्टीम आपको अलाउ नहीं कर रही कि आप अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की एक सीरियस और डिटर्मिंड एफर्ट करें। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि मैं कहाँ और मेरा टेम्परामेंट कहाँ, मैं थोड़ी अपने मतलब आई कांट कंट्रोल, आई कांट वर्क ऑन माई टेम्पर। बहुत से लोगों का ये बिलीफ है और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो विद वेरी पॉजिटिव और हाई सेल्फ एस्टीम एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज और विद पॉजिटिव माइंड सेट वन शुड अप्रोच दिस इशू। ये वाला एहसास के इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा और अल्लाह मेरी मदद करेगा और मैं अपने गुस्से पे काबू पाऊंगा, मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे अपने गुस्से पे काबू पाने में मेरी मदद करेगा, मुझे अपने गुस्से को ठीक करना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर से ख़त्म हो गई है। जब अपने बारे में पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है ही नहीं तो अपने टेम्परामेंट को इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि बस मैं तो ऐसा ही हूँ ना, तुम लोग मुझे इस तरह एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते जैसा मैं हूँ, एंड ऑल ऑफ मतलब बेयर विद मी। ये जो एटीट्यूड है ना लाइफ का, बेयर विद इट, दिस इज़ हाउ आई एम, ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। हमें अपने टेम्परामेंट को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है और उसको ठीक करने की ज़रूरत है। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिकल सजेशंस हैं मेरी, बहुत सारी टॉक्स हैं कि हम अपने नफ्स पे कैसे काम कर सकते हैं, अपनी इमोशनल नीड्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने मिजाज को कैसे बेहतर कर सकते हैं, और इसकी बहुत प्रैक्टिकल सजेशंस हैं। अगर आप इस पे क्वेश्चन करेंगे तो मैं इंशाल्लाह उसकी स्पेसिफिक आपको शेयर कर लूँगा कि उस पे क्या किया जा सकता है। एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि अपने टेम्परामेंट को एसेस करने के लिए बहुत सारे सेल्फ एसेसमेंट्स हैं जो आसानी से आप गूगल करें आपको मिल जाती हैं चीज़ें। तो अपने टेम्परामेंट को जो आपको सूट करता है कोई अच्छा सा सेल्फ एसेसमेंट डाउनलोड कीजिए और उसको पीरियोडिकली अपने आप को एसेस कीजिए। हर महीने एक दफ़ा वो सेल्फ एसेसमेंट कीजिए कि पिछले महीने अपना टेम्परामेंट को मैंने चेक किया, मैं इधर स्टैंड करता था, और अगले महीने मैंने चेक किया और मैं इधर स्टैंड करता हूँ। आप अपने बच्चों की अच्छी तरबिया नहीं कर सकते अगर आप अपने नफ्स पे काबू नहीं पा सकते, अगर आपको अपनी ज़बान पे काबू नहीं रहता, अगर आपको अपने गुस्से पे काबू नहीं रहता, अगर आप आसानी से उदास हो जाती हैं या हो जाते हैं, अगर आप आसानी से बुरा मान जाते हैं, अगर आप आसानी से नाराज़ हो जाते हैं, अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं। कुछ लोगों ने इसको अपने तारुफ का पार्ट बना दिया है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। हम में से कोई भी ऐसा आदमी जिसने अपनी वीकनेस को अपने इंट्रोडक्शन का पार्ट बना लिया है उसने अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर ली है। बहुत से लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस ही ऐसे करते हैं, सर मैं, मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मेरे ये इंटरेस्ट हैं और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। इफ़ यू विल डिस्क्राइब योर सेल्फ इन दिस मैनर इट मीन्स दैट यू हैव एक्सेप्टेड एंड यू आर रिकग्नाइजिंग योर दिस टाइप ऑफ सेल्फ एंड इट इज़ यू, आप हैं वो इंसान जो अपने आप को तब्दील होने के रास्ते में रुकावट बन गए। आपने अपने आपको ये कहना चाहिए कि हाँ मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने टेम्पर को इम्प्रूव करूँ और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मैं अपने टेम्परामेंट को बेहतर कर लूँगा। ये कहना कि जनाब मैं तो ऐसा हूँ, मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी ये हो जाता है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। पीपल हु कीप ऑन सेइंग मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ या मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, उन्होंने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी की हुई है। अपनी जो एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी है या ओवर सेंसिटिविटी है इस प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने ऊपर निगाह डालने की ज़रूरत है, अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। सबसे अहम काम जो आप किसी कागज़ के ऊपर कर सकते हैं उसका नाम है सेल्फ एनालिसिस। इससे ज़्यादा अहम काम अपने कागज़ किसी कागज़ पर आप नहीं कर सकते। एंड आफ्टर हैविंग लर्न्ड हाउ टू राइट, वेरी फ्यू पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव डन दिस वर्क। वेरी वेरी फ्यू पीपल गेट दिस चांस और रियलाइज दिस नीड टू एनालाइज देयर ओन सेल्फ, टू आइडेंटिफाई देयर वीक एरियाज, टू आइडेंटिफाई देयर स्ट्रॉन्ग एरियाज, टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, टू लुक इनसाइड। सबसे ज़्यादा कीमती काम जो आप कागज़ पर पेंसिल से कर सकते हैं वो सेल्फ एनालिसिस है। आप बैठिए अपने साथ, आप टाइम लगाइए, आप इसके लिए चाहे आपको दो दिन छुट्टी लेनी पड़े आप छुट्टी लें, आप कहीं वेकेशंस पे जाएं और उसका मकसद ये हो कि मैं इस दफ़ा वेकेशंस पे दरिया और पहाड़ और मॉल देखने नहीं गया हूँ, अपने नफ्स को तलाश करने के लिए गया हूँ, अपने आप को पाने और ढूंढने के लिए गया हूँ, मैं ये देखने के लिए गया हूँ कि मैं ऐसा कैसे बना जैसे बना, मैं ऐसा क्यों हूँ जैसा हूँ, मैं कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेक फुल चार्ज ऑफ माई ओन सेल्फ। इस स्पिरिट के साथ आपको अपने साथ कुछ वक्त लगाने की ज़रूरत है और जब आप ये काम करेंगे तो आपका टेम्परामेंट बेहतर होगा। और इसके लिए आपको यकीन होना चाहिए, जिस इंसान को अपनी स्किल्स पर यकीन नहीं है कि मेरे पास तो इतनी स्किल्स नहीं है कि मैं अपने आप को सही कर लूँ, अगर वो मुसलमान है तो उसको खुदा पे इतना यकीन होना चाहिए कि उसके पास तो ये कुदरत है कि वो हमें सही कर दे। तो कुछ अपनी कोशिश कीजिए, कुछ उससे मांगिए कि वो मुझे ठीक करे, लेकिन अपने टेम्परामेंट को ठीक करने की ज़रूरत है, अपने मिजाज को ठीक करने की ज़रूरत है, अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल और मेंटल कैपेसिटी को बेहतर करने की ज़रूरत है اس اسٹرینتھ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے لیے خوش ہونا مشکل ہو گیا ہے, اگر آپ کے لیے خوش نظر آنا مشکل ہو گیا ہے, اور آپ کے بچے اور آپ کا اسپاؤس آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ خوش نظر نہیں آتے. دیکھیے, مجلسی تبسم جو ہے وہ بہت آسان چیز ہوتی ہے, جسے میں پارٹی اسمائل کہتا ہوں. وین یو میٹ سم ون ایلس آؤٹ سائڈ یور ہوم, ہاؤ یو اپیئر اسمائلنگ. بٹ وین یو آر ایٹ ہوم ود یور فیملی ممبرس, ہاؤ ڈو یو لک؟ واٹ از یور ڈیفالٹ فیس ایکسپریشن؟ دس از سم تھنگ وچ کاؤنٹس. یہ اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے اوپر کام کریں گے. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگر ہم ایک اچھی فیملی لائف, ایک میننگ فل اور ہیپی فیملی لائف چاہتے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوگا, اپنے ٹیمپرامنٹ اور اپنے مزاج کو فوکس کرنا ہوگا, اپنے ساتھ ٹائم لگانا ہوگا, اپنے بارے میں اپنے مخلص ساتھیوں سے فیڈ بیک لینا ہوگا. جیسے میں نے کہا, آپ اپنے اسپاؤس سے پوچھیے, تم میرے ٹیمپرامنٹ کو کیا ریٹ کرو گے, تم میرے صبر کو کس طرح ریٹ کرو گے, تم میری ایموشنل اسٹرینتھ کو کیسے ریٹ کرو گے, میرے لیے کسی شوق سے ریکور کرنا آسان ہے یا مشکل ہے. تو آپ پہلے ایک اسسمنٹ بھی لیں, پھر اس سے بھی آپ سجیشنز لیں. آپ کہیں, تمہارے خیال میں میں اپنے مزاج کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں یا کیا کر سکتی ہوں. خدا نے ہم سب کی ایک ذمہ داری لگائی تھی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات کہی تھی, مسلمان مسلمان کا آئینہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کو فیئر اور اوپن فیڈ بیک کسی بھی وقت دے سکے. ہم ایک دوسرے کے لیے آئینہ نہیں بنے, یعنی آئینے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں اس میں دیکھوں تو مجھے اپنا آپ نظر آئے. یعنی میرا جو اسپاؤس ہے یا میرا جو دوست ہے یا میرے جو آس پاس لوگ ہیں, ان سے ایسا اتنا اچھا ٹرسٹ والا لیول ہونا چاہیے کہ جب میں ان کو دیکھوں تو وہ مجھے بتا سکیں کہ میرے ساتھ کیا ایشو ہے اور میں انہیں بتا سکوں. لیکن یہ جو ہمارے اندر بات یہ ہے کہ جب وہ ہائر لیول آف ٹرسٹ نہ ہو, جب وہ اوپننیس نہ ہو, جب وہ پازیٹیوٹی نہ ہو, تو ہم بہت فارمل ہو جاتے ہیں. ہم بہت, مطلب ہمیں سوچنا پڑتا ہے. یعنی اس وقت آپ سوچئے کیا سچویشن ہے کہ ہسبینڈ اور وائف ایک دوسرے سے کیسے بات کریں اور کب بات کریں اور یہ بات کیسے کریں اور کریں یا نہ کریں, اس پہ سوچتے رہتے ہیں بعض اوقات. اور مطلب یہ ایک چیلنج ہے, اس لیے کہ ہمارا ریلیشن شپ اس لیول پر نہیں ہے, اتنا گہرا ٹرسٹ نہیں ہے, اور اتنی اوپننیس اور اتنی پازیٹیوٹی نہیں ہے کہ ہم وہ چیز اوپنلی شیئر کر سکیں. تو جو کوالٹی آف فیملی لائف ہے اور کوالٹی آف ریلیشن شپ ہے, جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں, وہ کوالٹی آف فیملی لائف اور کوالٹی آف ریلیشن شپ نیچے آ رہی ہے. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پہ یہ اسٹارٹ ہوگا اپنے اوپر کام کرنے سے. آخری پوائنٹ جس پہ میں چاہوں گا کہ ہم کام کریں, وہ یہ ہے کہ ہم تربیہ کے گریٹر ویژن اور تربیہ کی جو کمپیٹنس ہے تربیہ کرنے کی, ہم یہ سب حاصل کریں. اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اس کے لیے لگنا پڑتا ہے, اس کے لیے کسی میننگ فل ورتھ وائل ٹریننگ پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے کچھ عرصہ لائف کا ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہم یہ سیکھیں کہ کیسے بچوں کی اچھی تربیہ پاسبل ہے. اس لیے کہ آپ کے بچے ابھی اسکول جا رہے ہیں, ان کو ہائی اسکول سرٹیفکیٹ مل جائے گا, ان کو ڈگری مل جائے گی, یہ گریجویٹ کر لیں گے, یہ ماسٹرز کر لیں گے. لیکن یہ جو فارمل ایجوکیشن ہے جو انسٹیٹیوشنز میں انہیں مل رہی ہے, یہ انہیں اچھا بیٹا یا اچھی بیٹی بننے کی تربیت نہیں دے رہی. وہ بچہ جو ماسٹرز کر لیتا ہے یا گریجویٹ کر لیتا ہے, کیا وہ زیادہ اچھا جانتا ہے کہ امی کو کیسے خوش کرتے ہیں, ابو کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ کیا وہ زیادہ اچھی طرح جانتا ہے؟ نو کوریلیشن, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح وہ انسان جو فارمل ایجوکیشن میں آگے بڑھ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو زیادہ اچھا خوش رکھ سکے گا, یا وہ عورت اپنے شوہر کو اچھا خوش رکھ سکے گی؟ تو یہ جو ہماری تربیہ, دیکھیے تربیہ کا ویژن کیا ہے, تربیہ کا ایک ویژن یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑھاپے میں ہمارے پاس رہ سکیں, ہمارے بچے فیملی لائف کو ویلیو دے سکیں, ان کا کیریکٹر بہت اچھا ہو, ان کے ایمان بہت اچھا ہو, وہ بہت اچھی بیوی اور بہت اچھے شوہر بنیں, اور وہ بہت اچھی مائیں اور باپ بنیں. तो ये जो इस वक्त फॉर्मल एजुकेशन है वो इन्हें इसलिए नहीं तैयार कर रही, वो उनको एक बहुत अच्छा कॉर्पोरेट स्लेव बना रही है, वो उनको एक बहुत अच्छा अर्निंग इंडिविजुअल बना रही जो कमा सकता है, खुश नहीं रख सकता अपनी फैमिली के लोगों को लेकिन कमा बहुत सकता है। उसका उसका इल्यूजन ये है कि खुश रखने का तरीका है ज़्यादा कमाना और ज़्यादा खर्च करना। अगर मैं ज़्यादा कमा सकूँगा और ज़्यादा खर्च कर सकूँगा तो सबको खुश कर लूँगा, इस इल्यूजन के साथ वो आगे बढ़ रहा है। इसमें तरबिया कॉम्पोनेंट इंटीग्रेट होने की ज़रूरत है, और तरबिया कॉम्पोनेंट या तरबिया प्रोग्राम कैसे इसके साथ जुड़ेगा वो फैमिली लेवल पे शुरू होगा, उसको आप लीड करेंगे, तरबिया आपका विजन होगा। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अ वेरी क्लियर विजन ऑफ तरबिया, अ वेरी वेरी क्लियर विजन ऑफ ग्रेटर विजन ऑफ तरबिया। दूसरा पॉइंट, तरबिया के लिए जो जो मिजाज चाहिए, जो क्लैरिटी चाहिए, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो विजडम चाहिए, जो कॉम्पिटेंस चाहिए, उसको एक्वायर करना होगा, उसके लिए टाइम लगाना होगा। और ये जो तरबिया और पेरेंटिंग, मैं जिस तरह की पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्टर्न मॉडल्स ऑफ पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं पेरेंटिंग के उस मॉडल की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर तरबिया इंटीग्रेटेड है, जो तरबिया इंक्लूसिव पेरेंटिंग मॉडल है, जो आपके बच्चों को इस दुनिया और उस दुनिया की कामयाबी के लिए तैयार करता है। वेस्ट हमें पेरेंटिंग नहीं सिखा सकता, ये जॉर्ज और पीटर और माइकल आपको ये नहीं बता सकते कि अच्छी पेरेंटिंग क्या है। क्यों नहीं बता सकते, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बच्चों की साइकोलॉजी जान लेने से अच्छी पेरेंटिंग नहीं होती। वो कौम जो अपने वालदेन से अच्छा सलूक नहीं कर पा रही वो आपको पेरेंटिंग नहीं सिखा सकती। वो इंसान जो अपने स्पाउस को, अपने स्पाउस के साथ ट्रस्ट का और अपने स्पाउस के साथ गहरी बॉन्डिंग का और अपने स्पाउस के साथ सेल्फलेस रिलेशनशिप नहीं चला सकता, वो आपको अच्छी पेरेंटिंग और अच्छी फैमिली लाइफ नहीं सिखा सकता। अगर आप उस मॉडल ऑफ पेरेंटिंग को फॉलो करेंगे तो इंडिविजुअलिज्म पैदा होगा, आपके बच्चे बहुत अपनी इंडिविजुअल लाइफ में एक्सेल करेंगे, लेकिन जो कलेक्टिव लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, जिसके अंदर सही खुशी और सही मानवियत, जिसके साथ मीनिंगफुल और हैप्पी लाइफ जुड़ी हुई है, वो उसी वक्त मुमकिन होगी जब तरबिया कॉम्पोनेंट इंटीग्रेट होगा उनके उनकी एजुकेशन के साथ। इस वक्त वो एजुकेशन ले रहे हैं लेकिन तरबिया नहीं ले रहे इस वक्त। और ये तरबिया का प्रोग्राम घर में बनाने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, उसके लिए पहले हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो मैं ये आपको इन्वाइट करूँगा कि आप इसके लिए अपना टाइम निकालें और अपने आप को थोड़ा सा टाइम निकाल के देखें कि किन प्रोग्राम्स को आप अटेंड कर सकते हैं, कैसे आप उनके लिए टाइम निकाल सकते हैं। बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, हमारे पास यूट्यूब चैनल है जिसमें मोर देन 200 वीडियोज़ आर देयर ऑन दीज टॉपिक्स, अपनी सेल्फ को कैसे काम करें, बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप बेहतर करें, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप कैसे बेहतर हो सकता है, पेरेंटिंग चैलेंजेस कौन से हैं उसको कैसे एड्रेस करें, इसके ऊपर बहुत, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, इसके ऊपर डिटेल्ड प्रोग्राम्स हैं, इस पर वर्कशॉप्स भी हैं, इस पर कोर्सेज भी हैं, इस पर ऑनलाइन स्टफ भी है, इस पर यूट्यूब वीडियोज़ भी हैं। तो मैं ये आपसे चाहूँगा कि आप ये चीज़ कि तरबिया क्या है, तरबिया कैसे होती है, हम घर में इसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत केयरफुल और बहुत बहुत ये सीरियस टॉपिक है। आप ये काम ट्यूटर नहीं कर सकता, ये काम कोचिंग, ये काम बाहर का आदमी कर ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये घर से होता है। ये काम इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज नहीं कर सकता, यूनिवर्सिटी ये काम नहीं कर सकती। बल्कि अगर तरबिया नहीं होगी तो स्कूल और कॉलेज के अंदर बहुत सारी और ट्रेंड्स हैं और वो उसकी तरफ भागेगा, उसकी तरफ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल हो, एक सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो ये अच्छे विजनरी तरबिया प्रोग्राम से पॉसिबल है, और वो आपको इनिशिएट करना होगा, उसके ऊपर आपने टाइम लगाना होगा। तो मैं समझता हूँ इसके लिए थोड़ा सा सोचिए, इस पर सोचिए। तरबिया का मैं एक आध और बात आपसे कर दूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा कि तरबिया ये नहीं है कि आपने अपने बच्चे को फोर्सफुली अच्छे काम करा दिए और फोर्सफुली बुरे कामों से रोक दिया, दिस इज़ नॉट तरबिया। तरबिया ये है कि वो अपनी चॉइसेस में रिस्पॉन्सिबल हो गया और सेंसिबल हो गया। तरबिया ये है कि वो खुद से ये चाहता है कि वो सही काम करे, वो आपको खुश करने के लिए नेकी नहीं कर रहा, वो अल्लाह की रजा के लिए नेकी करता है, दैट इज़ तरबिया। اور یہ تربیت ہمارے اس وقت کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ایسا کوئی کمپوننٹ، ایسا کوئی پروگرام اس وقت ان پلیس نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا کوئی پروگرام ان پلیس ہے ہمارے فارمل ایجوکیشن کے اندر؟ تو اور کیا اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو یا نہیں ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں پلیز آپ سوال پوچھئے. جی پلیز.
بات کو سنا جائے اور ان کو نگیٹ نہ کیا جائے، کم نہ کیا جائے. تو ہم ہر دفعہ ان کی بات کو سنتے ہیں، فار ایگزامپل یوٹیوب میں بہت ہیروز ہیں ان کے، یوٹیوبرز پیسے کما لیے کر رہے ہو کر رہے. تو ہر دفعہ سن کے ہر دفعہ کیسے ریئیکٹ کیا جائے کہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ فل اسٹاپ لگانا ہے؟ یہ مجھے بہت کنفیوزنگ لگتا ہے ٹائم کہ ہر دفعہ آپ سنیں، پھر ہر دفعہ آپ انہیں بتائیں کہ نہیں بیٹا دیر ہیز ٹو بی اے اسٹاپ، تو پھر وہ تنگ آ جاتے ہیں کہ مما آپ مجھے یہ کہتی رہتی ہیں. تو اس میں کیسے آپ ہینڈل کر سکتے؟
بہت اچھا سوال ہے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو چیز ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے وہ ضرور آپ انہیں بتائیں اور اس سے آپ روکنے کی کوشش بھی کریں، لیکن اگر آپ کی بانڈنگ بہت اچھی ان سے ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو ویلیو کریں گے. وہ انسان جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں. جس انسان کی ایکسپیکٹیشنز پہ میں پورا نہیں اترنا چاہتا، یہ اس بات کا انڈیکیٹر ہے کہ میں اس کا فیوریٹ، وہ میرا فیوریٹ نہیں بنا ہے. بہت بڑی کوالیفیکیشن جو پیرنٹس کی جس کے اوپر انہیں آنا چاہیے، ٹرائی ٹو بیکم یور چائلڈز فیوریٹ. اور اس کے لیے یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ آپ اس کی سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کریں، آپ اس سے اپنے مشوروں میں شریک کریں، آپ اپنی لائف کے مشورے اس سے لیں، آپ اپنی لائف اس سے ڈسکس کریں، آپ اس کو وہ رسپیکٹ دیں جو آپ اپنے پیئرز کو دیتے ہیں، آپ اپنے سبلنگز کو دیتے ہیں، وہ رسپیکٹ دیں آپ، اور انکنڈیشنل رسپیکٹ دیں. لیکن آپ ان کی فرمائشیں پوری نہیں کریں، آپ صرف وہ فرمائش پوری کریں جو واقعی ٹھیک ہے. اگر آپ کا بچہ کسی ایسے پروگرام کو واچ کرنا چاہتا ہے جو آپ کے خیال میں انپروپریٹ ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور وہ اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، تو آپ اپنی پوری بات اسی طرح کہیے، لیکن پیار سے کہیے، رسپیکٹفلی کہیے، لیکن بات کہیے. آپ کمپرومائز نہیں کریں، آپ گیو اپ نہیں کریں، اور آپ اس کے اوپر آپ بتائیے، ہاں ٹھیک ہے آپ کا یہ دل چاہ رہا ہے لیکن یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. اور ایک چیز کہلاتی ہے جس کو میں کہتا ہوں، دیکھیں جو گریٹر گولز آف پیرنٹنگ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے دو بڑی کوالیفیکیشنز ریکوائرڈ ہیں. پہلی کوالیفیکیشن ہے to become your child's favorite, یعنی establish a very strong bond. اتنا strong bond کہ آپ کی expectations اور آپ کی بات اس وہ میٹر کرے. اس کے لیے آپ یوٹیوب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں، اس کے لیے آپ گیم سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں. یہ بانڈنگ ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ، ایک اور جو اگلا اسٹیپ ہے جو پچھلے اسٹیپ کو سپورٹ کرتا ہے، وہ ہے میننگ فل کانورسیشنس یا ریفلیکٹیو کانورسیشنس. آپ اپنے بچے سے، اور کانورسیشنس کی بہت ڈیٹیل ہے، میں اس میں ایک بات یہ بتاؤں کہ دو ٹائپ کی کانورسیشنز ہوتی ہیں جو ہم بچوں سے کرتے ہیں. ایک ہے ایشو سینٹرڈ کانورسیشن، دوسری ہے پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن. تو آپ اپنے بچے سے اگر یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کا یہ پروگرام دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، تو یہ ایشو سینٹرڈ کانورسیشن ہے. لیکن پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن ایک اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل، ون آف دا پرنسپل سینٹرڈ کانورسیشن از، آپ اپنے بچوں سے یہ ڈسکس کریں کہ اگر کوئی چیز، اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو اور آپ کو نہ پتا ہو، اب ایک اور، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو اور آپ کو پتا بھی نہ ہو کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ کیا پاسبل ہے؟ اس کو اسٹیبلش کرنے کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے آئیں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوں جو آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں ہے کہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے لیے ڈینجر ہے، اور وہ کسی اور کو پتا لگتا ہے اور کوئی اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کو پتا لگ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ تو جس کو پتا ہے کہ یہ کام آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اسے آپ کو وارن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اسے آپ کو روکنا اور بتانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ آپ اس سے پوچھیں. ये प्रिंसिपल सेंटर्ड कॉन्वर्सेशन है, इसी को आप रिवर्स भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल उनसे कहें, अगर आपका दोस्त कोई ऐसा काम कर रहा हो जो उसके लिए डेंजरस है, उसके अंदर वो उसके लिए हार्मफुल है और उसको नहीं पता कि उसके लिए हार्मफुल है, और आपको पता लग जाता है कि वो काम उसके लिए हार्मफुल है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ऐसा कोई काम कर रहा हो और उसे पता भी ना हो कि वो उसके लिए हार्मफुल है? तो कहेगा हाँ ऐसा पॉसिबल है. तो आपको जब पता लग गया कि वो उसके लिए हार्मफुल है, व्हाट शुड यू डू नाउ? आप उससे पूछें. जब ये प्रिंसिपल इस्टेब्लिश हो जाए, अब इससे अगले स्टेप पे जाएं. क्या ये पॉसिबल है कि आप कोई काम कर रहे हैं और वो आपके लिए ठीक नहीं है, और आपको पता भी नहीं है कि वो ठीक नहीं है, और मुझे पता है कि वो ठीक है, कि वो गलत है, वो हार्मफुल है, तो क्या मुझे आपको रोकना चाहिए? फिर उसको बताएं, अगर मुझे आपसे मोहब्बत है, अगर मैं आपसे सिंसियर हूं तो रोकूंगा आपको, और अगर मुझे आपसे सिंसियर नहीं हूं और मोहब्बत नहीं है तो, और मैं आपसे फेयर नहीं हूं, तो मैं आपको करने दूंगा. ये बात डिस्कस करें. बहुत से बच्चों को ये नहीं पता कि मेरी अम्मी जिस बात से मुझे रोकती हैं वो क्यों रोकती हैं. बहुत से बच्चों को नहीं पता कि मेरे अब्बा जिस बात से मुझे रोकते हैं क्यों रोकते हैं. आप प्रिंसिपल सेंटर्ड डिस्कशन करें, इशू सेंटर्ड डिस्कशन नहीं करें, क्योंकि जब इशू पैदा हो जाता है तो आप बहुत मुश्किल सिचुएशन में होते हैं. आपकी इवन इशू के साथ भी आप प्रिंसिपल सेंटर्ड डिस्कशन करें विदाउट टचिंग द इशू, एंड चाइल्ड इज अल्हम्दुलिल्लाह, उसको अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त अकल दी है, उसको बहुत जहानत दी है, इंटेलिजेंस है उसके पास, वो उसको करेगा ठीक इंशाल्लाह. तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्वर्सेशन बहुत होने चाहिए, आपकी बैच के बातें होनी चाहिए. घर में सबसे ज़्यादा मज़े का काम जो होना चाहिए वो सोना नहीं है, वो खाना नहीं है, वो बातें हैं. हमारे घरों की ज़िंदगी में बहुत से बच्चों के लिए सबसे मज़े का काम सोना है, खाना है और मोबाइल है, नॉट बातें. वट आई एम आस्किंग यू कि द बेस्ट थिंग, द मोस्ट लवेबल, द मोस्ट इन्जॉयबल थिंग दैट कैन हैपन एट होम इज कॉन्वर्सेशन, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन. इसकी ज़रूरत है, और आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन को भी सीखने की ज़रूरत है. हाउ टू इनकरेज द अदर पर्सन पार्टिसिपेट इन टॉकिंग. बाज़ औक़ात हम ऐसे बात करते हैं कि सामने वाला बिल्कुल खामोश हो जाता है. क्या ख्याल, और कोई क्वेश्चन?
तो एक चैलेंजिंग पोजिशन में पाता हूँ कि बच्चे बहुत ज़रा डायनामिक्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों को है कि खाना टीवी देखते हुए या यूट्यूब देखते हुए खाना खाना है, तो हमने क्या किया, चलो उसको डिस्टर्ब नहीं करते, खाना खाने का बाद दिखाएंगे. अगर 10 मिनट से खाते बोलते तब उतना ही मिनट चाहिए, तो पहले 10 मिनट से जो खाना खाता था वो 1 घंटा से खाते कि 1 घंटा वो दिख पाए. दूसरा चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि सीट बेल्ट पहनो, तो बच्चों को एक ही नहीं कि सीट बेल्ट पहनना है, फिर बोलता पहले यूट्यूब में दिखाओ कि ये करता है, फिर मैं तो ये जो डायनामिक का चेंज हो रहा है, तो ऐसे कैसे निपट जाए?
ये बच्चों की जो ओरिएंटेशन है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को वो ये देखते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन उस सोर्स से आ रही है जिसको वो वैल्यू देते हैं, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को रिलायबल समझते हैं, और जब वो इन्फॉर्मेशन उस सोर्स से आती है जिसको वो वैल्यू नहीं दे रहे, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अहम नहीं समझते. कभी कभी यूट्यूब को इन्वॉल्व करने में हर्ज नहीं है, आप उसे दिखा सकते हैं. और वो जो बच्चों का खाना है टीवी वॉच करते हुए, वो ठीक नहीं है, वो माइंडलेस ईटिंग है. उससे यानी जब आप खाना खा रहे हो तो खाने को आप अटेंशन दें, या थोड़ा बहुत आपस में बातचीत करें, लेकिन टीवी या वीडियो ना देखें. तो इसके ऊपर भी आप बच्चे से बातचीत कर सकते हैं. अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आपके बच्चों की लाइफ में स्क्रीन्स ने आपके बच्चों की लाइफ को इन्वेट कर दिया, आपके बच्चों की लाइफ में स्क्रीन्स आ गई हैं, तो आप इसको बहुत ज़्यादा वापस रिवर्स नहीं कर सकते, आप इसको पीछे नहीं कर सकते. आप बस ये कर सकते हैं कि इसको मैनेज करें, इसके टाइम को इसको लिमिट करें, और जो चीज़ें वो देख रहे हैं उसमें वाकई कोई मीनिंगफुल चीज़ देखें उसके अंदर, उसको थोड़ा सा आप उसको आप बेहतर कर सकते हैं. आप ये देख सकते हैं कि वो टाइम कम लगाएं उसके ऊपर. लेकिन अगर जिस बच्चे की लाइफ में नहीं दाखिल हुई है उसको आप थोड़ा और डिले कर लें, लेकिन वन डे स्क्रीन्स उनकी लाइफ में एंटर होंगी और वो फिर उसके साथ काम करेंगे। तो इसको हम अंडू तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि वो मैनेज करें, आप देखें कि ठीक है जो चीज़ें वो देख रहा है वो वाकई कोई अच्छी चीज़ हो। और एक चीज़ और भी हो सकती है कि आप ये देखना है कि आप लोग घर में कितने एक्सप्रेसिव हैं, आप कितनी बातें करते हैं। पता है ये कॉन्वर्सेशन जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, अगर किसी आप किसी के साथ बातें कर रहे हो आप बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। बातें बहुत अहम हैं और हम बातें करने का जो आर्ट है ना वो हमें ढूंढने की ज़रूरत है। बहुत सारी फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कम एक्सप्रेसिव हैं या बात कम करते हैं, खामोश रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, टू द पॉइंट बोलते हैं, कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये चीज़ें हमें अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो जितनी बातें करने का हमें आर्ट आता होगा तो हम उन्हें स्क्रीन से अपनी तरफ वापस ला सकेंगे, इसको भी करने की ज़रूरत है। फिर कुछ और एक्टिविटीज़ भी, एक और भी चीज़ है जो हमें देखने की ज़रूरत है कि घर में बच्चे अगर स्क्रीन टाइम ना करें तो क्या करें, आपने उनको कितने दूसरे ऑप्शंस दिए हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। वो कुछ घर में क्या कोई ऐसी प्लांटेशन में उनका इंटरेस्ट है, क्या कुछ टूल्स हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल या कुछ ऐसा कुछ वुड वर्क वो कर सकते हैं, कुछ क्ले वर्क वो कर सकते हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ कैनवस हैं, कुछ और ऐसी चीज़ है जो वो बना सकते हैं, और कुछ आर्ट वर्क कर सकते हैं, कुछ लाइब्रेरी है, बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ राइटिंग कर सकते हैं, वो क्या दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, घर के काम वो कितने शौक से कर सकते हैं। उनको जब बच्चे छोटे होते हैं, हर बच्चे को घर के काम का शौक होता है। आप में से जिस के घर में 6 साल से छोटा बच्चा है उसको घर के कामों में इन्वॉल्व होने का शौक होगा, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसका शौक ख़त्म हो जाता है। इसलिए कि जब वो छोटा था और वो कहता था मुझे भी काम करना है, मुझे भी रोटी पकानी है, मुझे भी वॉशिंग करनी है, तो आप उसे करने नहीं देते थे। और जब वो बड़ा हो गया है, देखें वो बच्चा जो वॉशिंग करने को कह रहा है, हम कह रहे हैं तुम मुझे वॉशिंग करने दो और जाके ये टैबलेट लेके बैठ जाओ, तो हम उससे कहें नहीं टैबलेट छोड़ो आओ वॉशिंग करते हैं, मुझे हेल्प करो वॉशिंग में, मुझे हेल्प करो किसी किचन के काम में, कोई घर के काम में। तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि बच्चों को हम मुख्तलिफ कामों में इन्वॉल्व करें। और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप घर पे क्रिएट कर सकते हैं जिसमें अगर आपके पास टाइम नहीं है तो घर के अंदर दूसरी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि वो अपने आप को उन एक्टिविटीज़ में इंगेज कर लें। तो बहुत से बच्चों की लाइफ में एक्टिविटी ऑप्शंस बहुत कम हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और अगर वो स्क्रीन्स पे हैं तो अपने घर में कहीं ये लिस्ट डाउन करें, बच्चे के साथ बैठ के भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वो जिस पे वो काम कर सकते हैं, कौन से अच्छे एवेन्यूज़ हैं स्क्रीन के ऊपर जो वो देख सकते हैं, जो वो कर सकते हैं। तो वो लिस्ट भी कोई सामने होनी चाहिए, क्योंकि और वो काम ऐसे हों जिनको आप उनके साथ बैठ के इनिशिएट करें। जैसे अगर कोई बहुत अच्छी वीडियो है या कोई बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम है या कोई बहुत अच्छी कोई मीनिंगफुल चीज़ है जो यूट्यूब पे मौजूद है, तो वो आप उनके साथ बैठ के आप इनिशिएट करें, आप उसमें इंटरेस्ट लें, तो वो रीडायरेक्ट होगा किसी पॉजिटिव चीज़ की तरफ, किसी मीनिंगफुल चीज़ की तरफ। तो ये भी एक करने का काम। आपकी तरफ से ये बहुत अच्छा अप्रोच है कि आपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दिया है कि तुम जो कंफर्टेबली मुझसे शेयर करना चाहो वो शेयर करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही कि तुम अपना पर्सनल हिडन स्टफ मुझसे लाजमी शेयर करो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। ये तो आपके पार्ट से सही है, लेकिन बच्चे के पार्ट से अगर आपका रिलेशनशिप और पेरेंटिंग ठीक जा रही है तो उसका अर्ज टू शेयर एवरीथिंग विद यू ये बहुत ज़्यादा होगा। वो बच्चा जो सब कुछ आपसे शेयर करना चाहता है, ये इस बात का इंडिकेटर है कि वो आपको, आपके साथ उसकी बॉन्डिंग बढ़ रही है। बॉन्डिंग के नतीजे में अर्ज ऑफ शेयरिंग बढ़ती है। तो आपका रोल ये होना चाहिए कि आप उसको ये कॉन्फिडेंस दें कि ठीक है अगर तुम मुझसे कोई चीज़ नहीं भी शेयर करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी स्पिरिट ये होनी चाहिए कि मैं शेयर करूं। और ये उस वक्त होगा जब हमारी रिलेशनशिप, हमारी बॉन्डिंग बेहतर होगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन अगर बच्चे ने कोई, फिर भी अगर बॉन्डिंग बहुत अच्छी भी है तो भी बच्चों की बाज़ प्राइवेट चीज़ें होती हैं, उनकी पर्सनल नोटबुक है, उनकी पर्सनल कोई ऐसी उनका कोई पर्सनल कह लीजिए कोई उनका ड्रॉअर है जिसके अंदर वो अपनी पर्सनल स्टफ़ रखते हैं या कोई पर्सनल उनकी उनकी डायरी है, तो आपको उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आपने अपने बच्चे को मोबाइल फ़ोन दिला दिया है और वो छोटे हैं और आपने दिलाया है तो बहरहाल ये अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अगर आपने दिला दिया है तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप उनके मैसेजेस को चेक करें, क्योंकि आप या तो आप दिल आपने आप उन पर ट्रस्ट करें और आप उनकी प्राइवेसी को आपकी अगर कोई पर्सनल चीज़ों को चेक करें तो आपको कैसा लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही उसको भी लगेगा। तो आप बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ों से ना दिलाएं। और ये जो डायरी है कोई पर्सनल उसकी कोई ड्रॉअर है उसमें कोई वो अपनी कोई पर्सनल चीज़ लिख रहा है, कोई पर्सनल फीलिंग्स लिख रहा है, तो ठीक है वो उसकी पर्सनल चीज़ है, जब उसका दिल चाहेगा आपसे शेयर करेगा, नहीं शेयर कर रहा आप अंडरस्टैंड करें, यू शुड रिस्पेक्ट इट। बस पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों की इस तरह की चीज़ों को निकाल के देखते हैं, पढ़ते हैं और फिर खुद डिस्टर्ब होते हैं, वो कहते हैं उसने मेरे बारे में ये लिखा था, मुझे तो बहुत गुस्सा आया, फिर अगले दिन बुला के आप उससे पूछते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो आपको नहीं दिखा रहा, उसकी वजह ये है कि उसमें आपके बारे में गलत तस्वीर बनी हुई है और आपकी ट्रू पिक्चर बनी हुई है, वो नहीं दिखाना चाह रहा, छोड़ दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इन्होंने क्वेश्चन ये किया है कि अगर बच्चे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हैं और डिफरेंट इंटरनेट पे मुख्तलिफ काम करते हैं अपने लैपटॉप पे या अपने अपने कंप्यूटर पे, तो अगर हम उसे चेक नहीं करें तो हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का ना एक खास कॉन्टेक्स्ट है जिसमें प्रॉब्लम पैदा होता है, मैं थोड़ा सा उस कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करता हूँ। अगर आपका बच्चा अपनी लाइफ में किसी एक्टिविटी में इंगेज है, जैसे कंप्यूटर पे कुछ सर्फिंग कर रहा है या अपने अपने लैपटॉप पे कुछ सर्फिंग कर रहा है और आपको ये जानना है कि वो क्या सर्फिंग कर रहा है, और उसका एक ही तरीका आपके पास है कि आप उसको बाद में निकाल के उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री चेक करें या उसको कोई आप किसी तरीके से ढूंढें कि उसने क्या किया, इसका मतलब ये है कि आप और उसकी लाइफ में एक डिस्टेंस है। आपको ये जो टाइम टुगेदर है ना, अगर ये बढ़ेगा ना तो ये मसला नहीं होगा। जब वो इंटरनेट पे बैठा होता है तो आप कहाँ होती हैं, कभी कभी आप भी उधर ही हो जाया करें। और ये बेस्ट तरीका है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका बच्चा क्या देख रहा है क्या कर रहा है, तो आप भी एक बहुत गैर महसूस अंदाज में, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग, यानी उसका ये नहीं लगे कि आप उसको चेक करने के लिए आई हैं, लेकिन आप वैसे यू शुड बी अराउंड कभी कभी, कभी हैं कभी नहीं है, और कभी आप उसके साथ बैठी हैं, आप कह रही हैं हाँ मुझे भी तो बताओ तुम क्या करते रहते हो, तुम मुझे भी ज़रा शेयर करो। अगर वो कोई भी चीज़ देखें, आप जिस तरह आप अपनी लाइफ की विजडम और अपनी लाइफ के अर्ली एक्सपीरियंसेस, जिस तरह आपके लिए मैंने कहा कि आप उससे शेयर करें कि आपकी अर्ली लाइफ में क्या हुआ, आपकी दादा ने आपकी अम्मी ने आपके लिए क्या क्या चीज़ें की, क्या आप जब छोटे थे क्या करते थे, बिल्कुल इसी तरह वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ, उसको इनकरेज करें कि वो आपसे वैसे ही शेयर करें। और आप कभी कभी उसके साथ बैठ के देखें तो कभी कभी कोई सिली स्टफ़ होगा जो आपके सामने बैठ के देख रही होगी, लेकिन ठीक है आपको पता लगेगा कि अच्छा ये कोई सिली स्टफ़ देख रही है, वो देखने दें, उसके बाद फिर बैठ के अगर आप चाहते हैं कि सिली स्टफ़ उसकी चॉइसेस सिली ना हो, उसकी चॉइसेस सेंसिबल हों, तो ये ऐसे ये चेकिंग से नहीं होगा, ये कॉन्वर्सेशन से होगा।